الذي أحسن كل شيء خلقه. और जिसने खूब बनाया हर चीज को, जो भी बनाया. सिर्फ इस एक जुमले को अपनी जिंदगी का मोटो बना लें. अभी जो बात पीछे हम कर रहे थे ना, कामों को आसान तरीके से करो. अल्लाह कहते हैं मैंने भी हर चीज को आसान बनाया. और इसकी मिसालें देखनी है तो एक एक फूल की पत्ती को छू के देखे आसान बनाए. अपनी शक्ल को ही देख ले हम, कोई आंख दूसरी से छोटी को बड़ी है, कोई लंबी को पतली को मोटी. हर चीज़, हर मखलूक को जितना जैसा होना चाहिए था वैसी बनी. हमारे जिस्म के ऊपर आप देखिए कि जो मुख्तलिफ आज़ा लगे हुए हैं, अगर आप इन्हीं को नोट करते जाएं, आप बताइए कि ऐसे ही होने चाहिए थे कि नहीं. सच बताएं, अपने दिल से पूछें, नाक कितनी ही लंबी होनी चाहिए थी या इससे लंबी चलती थोड़ी. कितनी होती है हमारी नाक अमूमन? आप देखिए, यहाँ से नीचे से देखें तो 1.25 इंच, इधर से देख लें तो ये तकरीबन 2-2.5 इंच है. आप ज़रा इसको डबल करें, कैसा लगता है? कैसे हम लगते? नाक की जगह थोथनी लगी होती, हमारे नाकों की जगह सूंड लगी होती, कान इसकी बजाय ज़रा बड़े बड़े हाथी की तरह या गोभी के पत्तों की तरह के कान लगे होते, फिर और बड़े बड़े कांटे और पहनते और सजते, कैसा लगता? चले, ये जो आँख है इसकी बजाय सिर्फ डबल कर दें, भैंस की आँख लगा दें. हम कहते हैं ना बड़ी आँखें, सिर्फ आप अपनी आँख की जगह भैंस की आँख लगा के देखें. आप कहते हैं पत्तियाँ, होंठ नहीं, वो तो गुलाब की पत्तियाँ, आप पत्ती जितने पतले होंठ लगा दें, कैसा लगता हमें? है ना अहसना शेयन, कितना प्यारा उसने हमें बनाया. अहसना कुल्ल शेयन खलकहू, उसने पैदा किया, इतना प्यारा पैदा किया. यही तो अल्लाह कहता है लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत शक्ल सूरत में बनाया. आप देखें बाकी मखलूक कैसा, कंपेयर करके देख लें, कितनी ही खूबसूरत चीज़ें. मोर को देख लें, है हमसे ज़्यादा खूबसूरत. परिंदे को देखें, तीतर को देखें, लेकिन हम कारामत ज़्यादा हैं. इसके बरक्स कुछ जानवर बुरे लगते हैं, कुत्ता, खिंजीर, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया, जहरीले हैं, दरिंदे हैं, बुरे समझे जाते हैं, लेकिन उसमें भी खैर है. अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खैर रखी. मछली कैसी रखी? आप देखिए जो मछली की प्लेट की तरह का जिस्म है, पानी में ऐसे ही होना चाहिए था ना. हमारे साइज़ की और हमारी तरह की मोटे और बाजू और गर्दन निकली हुई मछलियाँ होती, पानी में कैसे तैरती? परिंदों का आपको पता है कि वेट कम होता है, परिंदे की हड्डी अंदर से खोखली होती है. परिंदे का वज़न आप लगा लें भैंस जितना होता, कैसे उड़ते? हम सूरह ताहा में भी इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं. हर चीज़ को खूबसूरत पैदा किया जैसी होनी चाहिए. फिर आप देखिए कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, गुस्सा, शहवत, हिर्स, लालच, हर चीज़ असल जितनी होनी चाहिए उतनी है. ज़रा सा हमारा गुस्सा तेज़ होता है तो हम नाकाम, जितना शौक होना चाहिए उससे बढ़ गए तो ग्रीडी बन गए, लालच बढ़ गया. रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंसान. और अगर आप वो पावर पॉइंट देखें जिसमें अल्लाह ताला की कायनात को दिखाया गया, तो मैं तो ये सोच के भी उसको देख रही होती हूँ कि हर सियारा दूसरे से मुख्तलिफ साइज़ का, सूरज से उसका डिस्टेंस मुनासिब है. ये हमारी ज़मीन, आपको पीछे पढ़ के सुनाया था एक मैंने रिपोर्ट में से, कि सूरज से फासला कम ज़्यादा कर दें तो हमारे मौसम ही बदल जाए, फसलें पकना छोड़ दें, कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाए, कोई इतनी छोटी हो जाए. जिस रब ने इतने प्यार से और इतना प्यारा बनाया, तुम उसके काम कैसे करते हो? तुम्हें दीन की वजह से क्यों अपनी यहाँ पर रहम आने लगता है? अल्लाह ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई. वबदा खलकल इंसान मिन तीन, और उसने आगाज़ किया इंसान की तख्लीक का मिट्टी से. बदा का लफ्ज़ यही वो लफ्ज़ है जिससे अल्लाह ताला का नाम अलबदी भी आता है. सबसे पहली दफ़ा बग़ैर किसी नक्शे के बनाना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है. आगाज़ हो गया इससे, उसके बाद इंसान को एक प्रोग्राम पे सेट कर दिया. सुम्म जाल नस्लहु मिन सुलालत मिम्मा महीन, फिर पैदा किया इसकी नस्ल को. हु से मुराद जहाँ आदम अलैहिस्सलाम है, या अल इंसान जो पीछे है, इसम जिन्स, इसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ने एक इंसान यानी आदम को बना के उसके बाद सेटअप इतना खूबसूरत कर दिया कि उसकी नस्ल चलती गई. मिन सुलाला, सुलाला का लफ्ज़ पीछे भी गुजर चुका है, सल्लुन से है, सीन लाम लाम, नुतफा, निचोड़, खुलासा, कंसंट्रेशन होता है ना, जैसे कंसंट्रेट उसमें पानी डालते हैं, वही मुराद है इधर. सारी प्रोग्रामिंग इसमें मौजूद है. आज साइंस की ज़ुबान में इसको आप कह लें तो ये DNA है, क्योंकि एक DNA के अंदर पूरे जिस्म की प्रोग्रामिंग मौजूद है. छोटी सी चिप है ना जो आप कंप्यूटर को लगाते हैं और उसमें मेमोरी आपकी इधर से उधर मूव हो जाती है, ये इंसान का सुलाला है। उसकी आंखों का रंग क्या होगा, बाल कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, अल्लाह ताला ने सब कुछ पेश कर दिया। कभी इंसान पैदा होते बच्चे को देखे, कितना आसन पैदा किया उसको अल्लाह ने, कितना खूबसूरत बनाया, कितनी उसकी तकमील अच्छी बना दी, और इंसान बाद में उसको कितना खराब करता है। हजरत इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा कि अहसाना क्या है, कि अल्लाह ने हर चीज को खूबसूरत बनाया, तो कहने लगे अतकना हो व अहकमा हो, कि इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को मुनासिब तरीके से बनाया और जैसे उसको जोड़ना चाहिए था वैसे जोड़ दिया, यानी बिल्कुल हर जोड़। आप देखिए कि हमारे जोड़ लगे हुए दिखते, 365 जोड़ है हमारी बॉडी में, जॉइंट्स। जैसे आप देखिए कि इस दो दीवारों के कोने में एक जोड़ है ना, इधर की शीट रॉक इधर से जुड़ी तो जोड़ बन गया, छतों के कोनों पे जोड़ है ना, कितनी मुश्किल से जोड़ छुपाते हैं, कहीं ऊपर पेंट करेंगे, कहीं पैनलिंग करेंगे, लकड़ियां लगाएंगे कि जोड़ छुप जाए। चले आप कपड़ा सी ले, जोड़ों के ऊपर क्या कुछ करते हैं, जोड़ जहां से छेड़ते हैं, कपड़े के सीधे और उल्टे का पता ही जोड़ों से चलता है। गुम सिलाई भी कर लें, आप टू वे यूज करने वाला भी कर लें, सिलाइयां फिर भी दिखती हैं। अल्लाह ने हमारे जोड़ देखे, आपको इस नाक के साथ कहीं जोड़ दिख रहा है, कि नाक की हड्डी अलग लगाई हुई है, कानों का जोड़ इधर है, कैसे एक पानी के कतरे में से इतना कुछ निकल के चला जाता है। इंसान अगर सोचे तो झुक जाए, उसको पता लग जाए कि अल्लाह की जात ने क्या कुछ बनाया। इसके बरक्स आज इंसानों ने एक जुल्म किया, और वो क्या, यहाँ एक बहुत ही डायरेक्ट किस्म की चोट है एक नजरिए पे, वो कौन सा नजरिया इर्तका का रद है। कहते हैं बंदर से इंसान बना, पहले नंगा फिरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता पत्ते चिपकाए, फिर कपड़ा बनाया। अल्लाह करे नहीं, बदल इंसान है, तुम बंदरों की औलाद नहीं हो, तुम्हारे दादा बंदर नहीं थे, तुम्हारे परनाना परदादा बंदर नहीं थे, तुम मट्टी से बने हो। आज तक कोई दलील नहीं दे सके उसकी। पीछे आपको सुनाई थी रिपोर्ट कि एक दफा डमी किस्म की उन्होंने तस्वीर भी दिखा दी कि देखे जबड़ा इंसान का था और सर बंदर का था। काफी अरसा लोग उसको देख के मबहूत रहे कि डार्विन ठीक कह गए, पूरे उनके म्यूजियम्स में वो पड़ा रहा, और बाद में पता चला वो फ्रॉड था। बंदर की हड्डी और इंसान का जबड़ा जोड़ के उन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज बनाई थी। क्यों नहीं मानते कि अल्लाह ने बनाया, इसलिए कि मानने के बाद फिर अल्लाह की बात माननी पड़ती है। ये जो लफ्ज़ है नस्ल हो, नस्ल पीछे हम पढ़ चुके हैं, यंसिलून में जुदा होना, अलग होना, ऊपर से किसी चीज का गिरना। जैसे आप देखे तस्बीह है या कोई डोरी है, उसका खोले तो मोती ऊपर से नीचे गिरते हैं ना, इसी तरह हमारी नस्लें भी फैलती हैं। हर जनरेशन दूसरे से अलग होती है, नाना दादा पोता पर पोता। किस तरह अल्लाह ताला ने इस तरह से चीज़ों को ला के रखा, और आए कहाँ से हो, मिम्माई महीन हकीर पानी, इतना गंदा, इतनी छोटी चीज़ के खुली आंख से दिखती नहीं। इतना इंसान को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया, सोने से नहीं बनाया, वरना फिर तो जमीन पे पाँव ही न रखता। सुम्मा सव्वाहू, फिर उसने उसके कदोकामत को दुरुस्त फरमा दिया। क्या है सव्वाहू, कैसा होना चाहिए, सीधा, प्लास्टर ऑफ पारस। ये तस्विया क्या होता है, एक होती है तादील, बाजू को एक बाजू से नापना। आप कमीज सीते हैं ना, आप नापते हैं एक बाजू इतनी है तो दूसरी भी उतनी होगी, जाहिर है। शलवार का एक लंबाई इतनी है तो दूसरी भी उतनी होनी, ये तादील कहलाती है। हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे सूरत इन्फितार में इंशाल्लाह। यहाँ है सवा, सवा हो क्या, प्लस्तर, स्मूथनेस बना दिया। अब स्किन को कितनी सख्त है, आप देखिए हर जगह की स्किन डिफरेंट फीलिंग देती है। बच्चे के मुंह पे हाथ लगाएं, हाथ पे लगाएं, आप नहीं लगा लें, आपको हर जगह डिफरेंट फीलिंग आएंगी। जिस्म का वो हिस्सा जो कपड़ों में छुपा रहता है, उसकी सॉफ्टनेस और तरह की होती है, पाँव की सॉफ्टनेस डिफरेंट होगी। ये है सुम्मा सवाहू व नफख फीही मिन रूही, फिर हमने उसमें फूंक दी अपनी रूह। व जअल लकुम सम्म वल अबसार वल अफ़ईदा, फिर हमने बना दिए तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल, ताकि पहचानो रब को। ये तीन ऑर्गन्स का भी बहुत तज़किरा पढ़ेंगे सुनेंगे आगे जाते जाते। ये सब कुछ बनाया कि अब देखो, लेकिन हाल क्या है लोगों का, कलीलम्मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं। इस तरह से भी इसका तर्जमा ठीक है, और बहुत थोड़ा है जो शुक्र करते हैं। एक लम्हे के लिए अगर एक इंसान सोचे ना, तो हिल के रह जाए। पहले तो आप देखिए, नफख फी ही मिन रूही ही, किसकी रूह की बात है? अल्लाह की रूह की बात है। चलिए यहाँ पे एक और नजरिए का रद्द है। नसारा का अकीदा क्या है कि हजरत ईसा में अल्लाह ने अपनी रूह फूकी थी, तभी तो बीबी मरियम को हमल हुआ, तो लिहाजा वो इब्नुल्ला। तो इस आयत की रोशनी में फिर पूरी दुनिया को नऊज़ुबिल्लाह आप इब्नुल्ला कहेंगे कि अल्लाह तो हर इंसान के लिए कह रहे हैं कि मैंने उसमें अपनी रूह फूकी। यहाँ असल में इजाफत बराए तशरीफ है, इज्जत देने के लिए। ये इजाफत हकीकी नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कोई चीज़ इंसान के अंदर डाल दी। ये वो ज़िंदगी नहीं जो आज दुनिया में दिखती है, बल्कि इसमें मुराद क्या है कि फ़िक्र शऊर इंसान को अल्लाह ने एक ज़िंदगी दी कि समझो गौर करो मैंने तुम्हें क्यों दिया। कभी रुक कर इंसान सोचे बना कहाँ से। देखिए बच्चा पैदा होता है, रोता है, हंसता है, बोलता है, ये सारे मादे आज ज़मीन में मौजूद हैं जो इंसान के जिस्म में, कोई इनको मिलाकर इंसान नहीं बना सका। गौर करो, शुक्र करो, वो देखने की सलाहियत पैदा हो जाना जो दूसरों को नज़र नहीं आता, ये शुक्र होता है। फहम अंबार, अब देखिए नेमतों के अंबार होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें नज़र नहीं आते। सर में दर्द हो गया, अल्लाह कहता है शुक्र करो, क्यों? कि दर्द अल्लाह की तरफ से रहमत है, वरना अचानक बीमारी आती, पता चलता दिमाग में ट्यूमर बन गई, क्या दर्द रहमत नहीं है? किसी के गिल्टी बनती है कैंसर की, पता कैसे चलता है उनको वहाँ दर्द हुआ, क्या दर्द रहमत नहीं? इलाज करवा लिया पता चल गया, हार्ट अटैक से पहले सांस फूलता है कि ये अल्लाह की रहमत नहीं? ताकि एकदम बीमार ना हो जाओ। शुगर के मरीज को देखिए, दर्द नहीं होता, अचानक पता चलता है जिस्म कमज़ोर हुआ, बीमारी पता चल गई, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या कुछ है? आप देखिए कि कलील मा तशकुरून, पीछे सूरह लुकमान तो पूरी सूरत शुक्र थी, यहाँ अल्लाह दोबारा शुक्र दिखा रहा है कि गौर करो, कान करो, पता चले तुमको किस तरीके से उसने बताया कि मेरे बन के जियो। और नागवार हालात को बंदा शुक्र के ज़रिए खुशगवार बनाता है। ना मुवाफिक चीज़ें मुवाफिक बनती तब है जब बंदा हर हाल में राज़ी हो, कोई अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो कहना है ना, क्या मुसीबत है, हाय मुसीबत, ये ना शुक्रा रवैया होता है। आज अगर हम पूरा वक्त इस पे गौर करें ना, कलीलम मा तशकुरून, तो फिर शायद हमारी ज़िंदगी में से कुछ जुमले तो ज़रूर ही निकल जाएंगे जिसमें ना शुक्रियाँ दिखती हैं। गौर करते हुए तिलावत सुनेंगे यहाँ तक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अलिफ लाम मीम, तंज़ीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, अम यकूलूना इफ्तरा बल हुवल हक मिन रब्बिक लितुंज़िर क़ौमन مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
آیت نمبر 7 سے انسان کی تخلیق کی جہاں بات شروع کی، پھر ثم جعل نسلہ اس کی نسل، غائب میں بات کی آیت نمبر 8 کے شروع میں، پھر ثم سواہ آیت نمبر 9 کا شروع غائب کی مثالیں ہیں، ونفخ فیہ من روحہ غائب ہے، یہاں تک غائب کی بات ہے، تھرڈ پرسن میں بات ہے، لیکن وجعل لکم السمع والابصار، جو ہی روح پھک گئی، جو ہی انسان کے اندر سینس آنے لگی، تو کہا کہ تم کو ہم نے دی سماعت، تم کو ہم نے بصارت دی اور تمہیں دل دیا۔ اب دیکھیے یہ قرآن کی باریکیاں ہوتی ہیں نا، کہ جب تک انسان سن نہیں رہا تھا تو اس کو غائب کہہ دیا، لیکن جو ہی وہ سننے لگا تو فرمایا کہ یہ تم ہو۔ یہ تھے وہ قرآن کے لفظوں کے حسن جس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے مکہ والے۔ قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو کانوں آنکھوں اور دل کا صحیح استعمال کرتے ہو، بہت تھوڑے ہو جو ان چیزوں کو اپنے رب کے بارے میں جاننے میں استعمال کرتے ہو۔ اب اس کے بعد مشرکین کا ایک جملہ، وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، جو نہیں مانتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اذا دللنا، کیا جب ہم کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، دعات لام لام اس کا روٹ ہے، دلہ دلت القدم ولدوالین، سورت فاتحہ میں ہم پڑھتے آئے یہ چیز، گم ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی تھوڑی سی چیز زیادہ مقدار میں گم ہو جاتی ہے نا، تو اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ بس آپ دیکھیے کہ آٹے میں آپ نمک ڈال دیں یا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو بعد میں آپ اس کو نکال نہیں سکتے نا۔ یہاں اشارہ ہے کہ جب ہم مریں گے پھر لوگ ہمیں مٹی میں دفن کریں گے، اور اس دفن کے بعد کیا آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ مٹی میں سے ہمارے سارے انگریڈینٹس نکال دیے جائیں گے؟ آئنَّ لفی خلق جدید، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی بڑی حیرت کا انداز ہے، ان کو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کرنے کا کیسے موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جملہ کیا سکھاتا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ حجت بازیاں بتا رہی ہیں، یہ بہانے تراشیاں بتا رہی ہیں، یہ سیریس نہ لینا بتا رہا ہے کہ یہ دل میں ایمان آیا ہی کوئی نہیں، ابھی ابھی اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے آگے جانا ہے، اس کو ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ورنہ کسی کو یہ کٹ حجتیاں سوجتی ہیں بھلا؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بچے کو پیدا ہو کے بڑا ہوتا دیکھنے والا بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو، ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ مثلا آپ سب کسی بھی جگہ کوئی کام کریں، آپ ایک کام بہت اچھا ہوتا دیکھیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے، تو کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ کام اسی طرح کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ پاسیبل ہے نا۔ مثال دیتی ہوں صرف ایک بات سمجھانے کو، کہ اگر آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں، آپ شروع میں تھے، آپ پہلا بیچ ہیں، آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا، کئی ڈاؤٹس ہوں گے دل میں، آپ کو بھی ہوں گے، دوسروں کو بھی ہوں گے، کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے ہوگا، کون ہے جو آتے رہیں گے، ہم دیکھیں گے آخر تک کون آتا ہے، ڈاؤٹس ہے نا۔ اب الحمدللہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ لوگ بڑے پیار اور شوق سے سیکھ رہے ہیں، تو کل اگر کسی نئے کورس کی بات کی جائے تو کوئی کہے یہ پاسیبل ہے، بھلا آپ یہ کروا سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دل میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو اللہ کی قدرت کے ناطے سے دیکھیں گے تو نتھنگ از امپاسیبل، اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے اپنے اختیار سے تو کچھ بھی چیز پاسیبل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے اوپر نظریں لگائیں۔ یہ باتیں، یہ جملے جب بھی کبھی آپ کو کوئی کام مشکل لگے اور آپ کی زبان پر آئیں کہ ہائے میرے لیے مشکل ہے، آئی کینٹ، میں یہ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتی، میرے لیے ممکن نہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ رب کی ملاقات کا کہیں کفر تو نہیں ہو رہا کہ جو بندے کو کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے والا بنا رہا ہے؟ تو ایسے لوگ یہ باتیں کر کے اس بات کا کھلا کھلا جواز پیش کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس، دے آر نان سیریس قسم کے لوگ ہیں۔ اِنَّ لَفِی خَلْقٍ جَدِید، क्या हम फिर पैदा किए जाएंगे? ये जुमला आप देखिए, ऐसे लगता है कि अधूरा छोड़ दिया। बात करके उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाया गया, कहा बस बात ये समझ आ गई कि ये लोग इस बात पर यकीन ही नहीं रखते कि ये काम हो भी सकता है और हम इस काम को करने वाले हैं। असल बात यह कि अपने रब की मुलाकात के मुंतजर हैं, वरना बात समझ आती है।